ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सौवसाहूणं एषो पञ्च नमो यारो सौवपावपनासनो मंगलानं च सव्येषिं पढ़मं हवयि मंगलम् पढ़मं हवयि मंगलम् पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की दूसरा पाठ का पहला प्रश्न था जैन धर्म का मूल मंत्र कौन सा है। उत्तर में कहा था जैन धर्म का मूल मंत्र नमोकार मंत्र है। नमोकार, नमो यानी नमस्कार, नमो यानी क्या, नमन, नमो का अर्थ नमन और कार का अर्थ कार। दो अर्थ से आर कार, इंग्लिश में कार कहते हैं। जो नमोकार मंत्र का सहारा लेता है उनके पास अवश्य कोई कार होता है, इसलिए नमोकार कहा। पंच परमेष्ठियों के पास कार है, उसी कार गाड़ी में बैठ करके वो यात्रा कर रहे हैं। चार परमेष्ठी अरहंत सिद्ध अरहंत आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, इनके पास कार है, कार गाड़ी है, इसलिए ये नमोकार में आते हैं। और गाड़ी नहीं होती तो ये नमोकार के भीतर नहीं आ सकते थे। जिसके पास कार हो वो नमोकार बन जाते हैं, जिसके पास कार हो वे नमोकार बन जाते हैं। और वो क्या है कार, तो संयम कार है। हमारे पास संयम का कार है इसलिए नमोकार में है। और संयम का यह कार न होता तो क्या हम नमोकार में होते? अच्छा बैठ गया अर्थ, नया अर्थ बैठ गया। सोचते सोचते कुछ तो आ ही जाता है नयापन। हम सभी कारगाड़ी में बैठे हैं। किस कारगाड़ी में बैठे हैं? संयम के कारगाड़ी में बैठे हैं। इसलिए तीन लोक इस कारगाड़ी में बैठे हुए जीव को नमस्कार करते हैं। जिसके पास संयम की कारगाड़ी है उन्हीं को नमस्कार। और जो नकली कारगाड़ी में बैठते हैं मारुति में, वो वंदनीय नहीं होते। उस कारगाड़ी का त्याग करने पर ही इस कारगाड़ी में बैठा जा सकता है, ठीक है ना। उस कार गाड़ी से उतर कर संकल्प पूर्वक उस कार गाड़ी को त्याग करना पड़ेगा और इस गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तब हम नमोकार में आते हैं। असंजदम न वंदे, असंयमी जीव वंदनीय नहीं होते। तीर्थंकर भगवान भी कहते हैं, मैं भी यदि असंयमी हूं, असंयम पर्याय में रहता हूं, तो मुझे नमस्कार नहीं करना, केवल जय जिनेन्द्र बोलना। भगवान तीर्थंकर उसी पर्याय से मोक्ष जाने वाले, उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव को नमस्कार नहीं कर सकते हम, जब तक वे असंयमी हैं। इंद्र देवता भी तीर्थंकर बालक को ले जाकर सुमेरु पर्वत पर आदर के साथ स्तुति करते हुए वे अभिषेक करते। जन्म कल्याणक मनाया जाता है देवों के द्वारा, वहां पूजा होती है क्या? अभिषेक होता है, तो अभिषेक से अभिषेक के बाद पूजा तो होना चाहिए, जैसे आप लोग करते हैं मंदिर में, पहले भगवान का अभिषेक, फिर गंधोदक, फिर पूजन। ऐसा इंद्र ने किया, असंयमी बालक की पूजा देवता लोग भी नहीं करते तो हम कैसे कर सकते हैं? एक प्रश्न है, तीर्थंकर भगवान जन्मे हैं, जन्म कल्याणक मनाया गया, वो बालक हैं, उनकी सेवा के लिए कौन आए थे? माता के गर्भ में रहते हुए गर्भ रक्षण के लिए, गर्भ सेवा की, माता की सेवा के लिए, तीर्थंकर को तो छोड़ दो, माता की भी सेवा के लिए अष्टकुमार देवियां आई थी। माता श्रेष्ठ या अष्टकुमारी देवियां श्रेष्ठ? सेविकाएं श्रेष्ठ या सेवी जो माता है वो श्रेष्ठ? आप तो सबकी पूजा करेंगे। तीर्थंकर की माता स्वाहा, देवियां स्वाहा, तीर्थंकर बालक स्वाहा, सभी स्वाहा, सबको ही स्वाहा कर रहे हैं? नहीं, ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म ही और हैं और हमारी क्रियाएं ही और हैं, तो इन क्रियाओं को आगम से, आगम तत्वों से तुलना करके कि ये सही हैं या गलत हैं, ये तुलना करके इनको सुधार करना पड़ेगा। जब तक सुधार नहीं होगा वो अंधश्रद्धा वाली क्रियाएं अंधश्रद्धा की कोटि में आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? और जब तक अंधश्रद्धा की कोटि में आएंगी तब तक वो सभी मिथ्यात्व की कोटि में आएंगे, और जब तक मिथ्यात्व की कोटि में आएंगे तब तक हमारे लिए सम्यक दर्शन उत्पन्न होने वाला ही नहीं है। और हमारा प्रथम धर्म सम्यक दर्शन जैन धर्म के अनुसार, और वही हमारे लिए प्राप्त नहीं हो पाया तो जीवन बेकार गया, जीवन बेकार गया। ये कार गया, कार का मतलब ये जीवन मिला था, हाँ जीवन मिला था, ये गाड़ी मिली थी, इसमें बैठ करके हमको किधर और जाना चाहिए था और किधर और गए हम, तो कार इधर गया ये कहना था, लेकिन कार नहीं गया, सब बेकार गया। बहुत सोचना है, जीवन एक स्वर्ण अवसर है, इसको स्वर्ण ही बनाने का प्रयत्न हमारा चलना चाहिए। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म करने से संसार सुख भी उत्पन्न होते हैं और निर्वाण सुख की प्राप्ति भी, मोक्ष सुख की प्राप्ति भी होती है। तो ये समझ में नहीं आता कि धर्म यदि मोक्ष का कारण है तो वह संसार सुख का कारण कैसे बना। और ऐसा कथन होने से ही लोग इस रास्ते को पकड़ चुके हैं कि धर्म हमें संसार सुख देता है इसलिए धर्म करते हैं। इस पॉइंट पर आए वो, क्योंकि उसमें लिखा है। तो उसके आधार से ही गाड़ी चलती अपनी। धर्म ही संसार सुख देता है, हमारी श्रद्धा बन गई। मान के चले धर्म संसार सुख देता है, ये श्रद्धा बन गई। फिर ये श्रद्धा बनने के बाद जिसको संसार का ही सुख चाहिए पड़ता है, वो संसार सुख के वास्ते ही धर्म करने लगता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, जिसको मोक्ष सुख की अनावश्यकता है, नहीं चाहिए, तो धर्म को किस लिए करेगा? तो संसार सुख के लिए करेगा। तो संसार सुख के लिए जो धर्म करता है वो धर्म की कोटि में आता है क्या? ये दूसरा प्रश्न। भौतिक सुखों को मन में लेकर उनको साधने के लिए धर्म करता है तो वो धर्म के कोटि में आएगा क्या? जो कुछ भी वो करता है क्रियाकलाप, तो किसके कोटि में आएगा? धर्म की कोटि में नहीं आता है तो नियम से अधर्म के कोटि में ही रहता है। इसका अर्थ निकलता है क्या? नहीं। तो धर्म की श्रद्धा संसार सुख के लिए यदि हम करते हैं तो धर्म की उत्पत्ति ही हमारे जीवन में नहीं होती, नहीं हो सकती। धर्म की उत्पत्ति ही नहीं होगी जीवन में यदि संसार सुख का साधन उसको बना रहे हैं तो। तो धर्म किसका साधन? मोक्ष का साधन। फिर मोक्ष का साधन यदि है तो ऐसा क्यों लिखा कि संसार सुख का साधन? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ यानी धर्म के मार्ग को साधे बिना नर त्रयंच समान, ऐसा क्यों कहा? तो इसलिए कहा कि जो धर्म करता है वो तो भौतिक सुख के लिए बिल्कुल करता ही नहीं। क्या करता है? जो असली धर्म को करता ही है तो संसार सुख के लिए करता ही नहीं। लेकिन जो संसार सुख के लिए धर्म नहीं करता, उसके लिए क्या संसार के सुख धर्म के कारण से नहीं मिलते? ये क्वेश्चन। तो मिलते हैं। कैसे मिल गए? धर्म से तो निर्वाण सुख की उपलब्धि होनी चाहिए थी, वो निर्वाण का साधन है, तो फिर संसार सुख क्यों मिला? तो विचार करें इस पर भी, गंभीरता से विचार करें। कोई व्यक्ति धर्म करने लग गया, प्रथम सीढ़ी चढ़ा, तो जीवन में क्या आया? सम्यक दर्शन आया। धर्म की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन। तो ये सम्यक दर्शन जो जिसने प्राप्त किया, क्या इस धर्म को, सम्यक तो धर्म को संसार सुख पाने के उद्देश्य किया? यदि संसार सुख को पाने के उद्देश्य सम्यक दर्शन यदि पाता तो क्या सम्यक दर्शन को यदि पाता तो वास्तव में पा जाता? होता ही नहीं, उसको सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। प्रथम सीढ़ी वाला संसार सुख ही देह में है तो सम्यक दर्शन क्यों होगा? सम्यक दर्शन के इसलिए 8 अंग बताए हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि आदि 8 अंग हैं। उसमें दूसरे नंबर का अंग कौन सा? निकांक्षित अंग है। निकांक्षित का क्या तात्पर्य है? भौतिक सुख के अभिलाषा के बिना धर्म पुरुषार्थ करना, ये निकांक्षित अंग है। तो धर्म पुरुषार्थ का मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ भौतिक सुखों को मन में प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हुए क्या सम्यक दर्शन प्राप्त होगा? भौतिक सुख को त्याग करके ही, भौतिक सुखों की अपेक्षा को छोड़ करके ही इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं तो सम्यक दर्शन भी आसानी से प्राप्त होता है। ये सही है क्या? नहीं, क्या ये भी गलत लगता है? महाराज क्या पता ये सब, हम तो पहले से ये करते हुए आए हैं, हम ऐसा सिर खुजाते हुए बैठेंगे तो काम नहीं चलने वाला। जैन धर्म विचारकों का है, विचारक बनने पर ही धर्म होगा। प्रश्न ये आया था क्या कि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसको भौतिक सुख तो मिलने नहीं चाहिए था, पर क्यों मिल रहे हैं और क्वालिटी के मिल रहे हैं? वो भौतिक सुख के सुख की प्राप्ति की इच्छा से जो धर्म कर रहा था उसको तो क्वालिटी के तो स्वप्न में भी नहीं मिले, जिंदगी गंवा दिया इस उस प्रकार का धर्म करते करते, पर क्वालिटी वाला सुख नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, आप विचार करो, उस प्रकार के धर्म को यानी भौतिक सुख की कामना से करने वाले धर्म को करते समय उस समय के उसके परिणाम भाव और ये कामना को छोड़ करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला ये धर्म पुरुषार्थ कर रहा है, चौथे गुण स्थान में आ गया, इसके परिणाम में और उसके परिणाम में कितना फर्क है? बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अब सोचो, अब आ गया इसका उत्तर, जो धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरचिंत नित्रेंच समान, ऐसा जो कहा है इसका उत्तर अब आ गया। देखो ये है कि सम्यक दृष्टि जीव को उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है या मिथ्या दृष्टि जीव को, क्योंकि परिणामों में शुभ परिणामों की उत्कर्षता सम्यक दृष्टि में है और मिथ्या दृष्टि में अनुत्कर्षता। भाव किसके उज्जवल है? सम्यक दृष्टि के। तो फिर भौतिक सुख की कामना थी क्या इनमें? फिर ये जो पुण्य बंध गया इनको, उत्कृष्ट बंधा, ये पुण्य क्या देने वाला है इनको? पुण्य क्या देने वाला है? संसार सुख देने वाला है। और किस प्रकार का? क्वालिटी का। और ये पुण्य क्वालिटी का फल देता है तो वह जो कुछ भी धन संपत्ति वैभव इत्यादि बाहर रूप से मिल रहा है ये पुण्य का फल है। वो पुण्य का फल है, पुण्य कमाया था उस पुण्य का फल है। पुण्य कमाया था तो क्या मतलब पुण्य को कमाऊं इस प्रकार बुद्धि से कमाया था? नहीं, धर्म को करूं इस बुद्धि से धर्म किया था, लेकिन पुण्य ऑटोमेटिक आया था। अब ये पुण्य क्या देगा धर्म करने वाले को? संसार सुख। तो संसार सुख भोगेगा क्या? नहीं भोगेगा ना, इच्छा नहीं होती भी भोगेगा ना। जब तक शरीरधारी है तब तक क्या खाएगा पिएगा? नहीं, क्या खाए पीने पिए बिना ही मोक्ष जाएगा? तो खाना पीना भी तो उसको भोगना है। मुनि महाराज भी आहार करते हैं कि नहीं? तो ये पुण्य का फल है आहार, आहार पुण्य का फल है। पुण्य पहले का है, वो अचेतन तत्व है, वो पुद्गल है पुण्य, वो प्रशस्त परमाणु है, वो पाप परमाणु नहीं, प्रशस्त परमाणु है। उन परमाणुओं को हमने बांधा था, बांधने के बाद ये मिल रहा है, उस पुण्य का फल आज ये मिल रहा है। एक जीव चक्रवर्ती बना तो ये सम्यक्तु का परिणाम है क्या मिथ्यात्व का? आज तक मिथ्यात्व करके भौतिक सुख की उत्कृष्ट कामना भाते हुए मैं चक्रवर्ती बनूं, मनुष्य भाव में जन्म ले लूं तो चक्रवर्ती बनूं और स्वर्ग में जन्म ले लूं तो इंद्र बन जाऊं, ये कामना करके, कामना के साथ धर्म करो, ये दोनों पद मिलते हैं क्या? देख लो, मिलेंगे इंद्र पद, चक्रवर्ती पद, तीर्थंकर पद, ये क्या कामना के फल हैं? ये निष्काम वृत्ति से जो सम्यक दर्शन की आराधना की थी, चारित्र संयम की आराधना की थी, उसका फल है। आप लोग षोडश कारण पूजा पर्व मनाते हैं, षोडश कारण पूजा भी करते हैं। षोडश कारण पूजा किस लिए करना चाहिए? तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए। तीर्थंकर प्रकृति का बंद क्या सम्यक दृष्टि को होता है? क्या मैं तीर्थंकर प्रकृति का बंद करूं इस प्रकार कामना रखकर, सम्यक दर्शन रूपी धर्म को दूर रखकर, तीर्थंकर बनने की कामना रखकर प्रयत्न करने वाले को तीर्थंकर बनना संभव है? सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए 16 कारण भावनाओं में प्रथम भावना का नाम बता दो क्या है? दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि यानी क्या? सम्यक दर्शन रूपी धर्म को हम विशुद्ध रख करके, निरतिचार अतिचार अनाचार आदि से दूर रखकर, देखो दोष चार प्रकार के होते हैं किसी भी व्रत के, सम्यक व्रत या संयम व्रत, व्रत के चार दोष, चार प्रकार से दोष होते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम का मतलब क्या? मन में विचार आना, गलत विचार मन में आना, ये अतिक्रम है। व्यतिक्रम का मतलब मन में विचार तो आया लेकिन वैसा कर ही लूं इस प्रकार प्रवृत्ता आना विचारों में, उसके उन्मुख होना, ये व्यतिक्रम है। अतिचार, एक देश दोष कर लेना जो नहीं करना चाहिए था कर लिया। अनाचार, कर ही लिया, एक बार कर लिया, अब उसको छोड़ने को मन नहीं कर रहा है, यही यही करूं ये हो रहा है और वही वही करने लगा, ये अनाचार हो गया। उदाहरण, जैसे बच्चों को और लाए, उदाहरण देखो, मैं धर्म करूं ये मन में आया, इसमें कर्म का बंध नहीं है, अच्छी बात है, धर्म करूं ये आया, लेकिन बाद में आया, मुझे भौतिक सुख पाने के लिए ही करना है, आ गया, विचार आया, ये अतिक्रम हुआ, भौतिक सुख के लिए करना है, ये विचार आया, ये अतिक्रम दोष हुआ, और वह प्राउड हो गया, विचार घनीभूत हो गया, तो व्यतिक्रम हो गया, और विचार ही घनीभूत हो गए तो फिर करने को मन करेगा, तो मंदिर उठ के जाने ही लगे, भगवान से प्रार्थना करना है और भौतिक सुख चाहिए इसलिए जाना है, ये अतिचार हो गया। एक दिन जा करके पूजा करके ही चले आए, ये अतिचार हो गया। अब उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं, ये अनाचार हो गया, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, चार प्रकार के दोष सम्यक्तु के होते हैं। इससे विरुद्ध चलेंगे तो एक भी दोष नहीं होगा। कैसा? ऐसा विचार आया, ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं आत्म कल्याण के लिए मंदिर जाऊं, भौतिक सुख की जरूरत नहीं मुझे, वो तो ऑटोमेटिक मिलते रहते हैं, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पद साधे बिना नर तिरंज समान कहा है, भौतिक सुख तो ऑटोमेटिक मिलने वाला है धर्म करने वाले धर्मात्मा को, प्योर क्वालिटी का मिलता है, इसमें मैं विश्वास करता हूँ, ये कह करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मंदिर गया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, उस धर्म की प्राप्ति के लिए विचार आया कि मैं जाऊं, सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए मैं मंदिर जाऊं, ये क्या अतिक्रम दोष में आएगा? नहीं, ये गुण के भीतर आएगा, ये आत्मा का गुण है, दोष नहीं। ये विचार गुण की कोटि में आएगा, दोष की कोटि में नहीं आएगा, दोष के कोटे में नहीं आएगा। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मंदिर जाऊं, ये धर्म की उत्पत्ति की प्रथम सीढ़ी है, विचार की प्रथम सीढ़ी, ये गुण की कोटि में है। अब इसके बाद मैं, मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो आत्म कल्याण भी नहीं होगा और भौतिक सुख तो मिलेंगे ही नहीं क्वालिटी वाले, तो मुझे वैसे क्वालिटी वाला भी नहीं चाहिए और अनक्वालिटी वाला भी नहीं चाहिए, मुझे तो सम्यक दर्शन धर्म से मतलब है, वो सम्यक की उत्पत्ति देव दर्शन से हो जाए, पूजन से हो जाए, उसमें प्रौढ़ता आ जाए सम्यक्तो में, इस दृष्टि से मुझे जाना ही चाहिए, ये घनीभूत विचार हो गए। जाऊं, ये सामान्य विचार हो गए, ये गुण की प्रथम सीढ़ी, सम्यक दर्शन प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी, सम्यक दर्शन धर्म रूपी प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी, मुझे जाना ही चाहिए, ये दूसरी सीढ़ी, घनीभूत सीढ़ी। और गए और भगवान का दर्शन किया, पूजन किया, हे भगवान आप जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति मेरे जीवन में होना चाहिए, चाहे वो उपशम सम्यक्त हो, क्षोपशम सम्यक्त हो, कोई भी हो, मुझे कोई भौतिक कामना नहीं है मन में, मुझे तो सम्यक दर्शन धर्म का लाभ हो जाए इतना ही पर्याप्त, उससे तो सारे काम सध जाएंगे। तो क्या दोनों तरफ आसक्ति है, भौतिक कामना में भी, भौतिक सुख में भी आसक्ति और धर्म में भी आसक्ति, एक ही हो सकता है ना? तो दोनों तरफ रहेगा तो सम्यक दर्शन घाटे में पड़ जाएगा, प्राप्त हो या ना हो द्विधा, तो ऐसे परिणामों में मिश्र गुणस्थान होता है। ये मिश्र गुणस्थान कब होता है? मुझे भौतिक सुख भी और धर्म सुख दोनों को समान दृष्टिकोण लेकर के, 50% ये और 50% ये, दोनों मिल जाए, धर्म भी मिले और भौतिक सुख भी मिले, दोनों एक साथ कामनाएं जहां होती है ना, वहां मिश्र गुण स्थान होगा। और केवल धर्म की प्राप्ति के लिए कैसे परिणाम चाहिए? भौतिक सुख की मुझे जरूरत नहीं, वो स्वतः अपने आप मिलने वाली चीज है, तो मुझे उसको मांगूं क्यों? किसान बीज बोता है, ज्वारी बो दिया खेत में, किस उद्देश्य बोना चाहिए? फसल के उद्देश्य, धान्य आ जाए, इस उद्देश्य से किसान को बीज बोना चाहिए। क्या दोनों उद्देश्य रखना चाहिए कि मुझे फसल भी मिले और वो फसल के नीचे जो वो शिट्टा होता है उसके नीचे जो पत्ते होते हैं और डंटल होता है वो भी मिले, और 50-50% परिणाम है वो डंटल पत्ता सब भी मिले, और डंटल पत्ते की कामना करना जरूरत है क्या? बीज बोया है तो है? वो ऑटोमेटिक मिलेगा ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऑटोमेटिक मिलने वाली चीज को मांगना क्यों? ऑटोमेटिक मिलने वाली चीज को कौन नहीं मांगता? मनुष्य नहीं मांगता। इसका मतलब जो नीचे का मांगता है वो किस कोटि में आता है? भौतिक सुख को मांगने वाला पशु ही है। भौतिक सुख की मांग करने वाला पशु नहीं है तो क्या है? अरे जहां धान मिलने वाला है, 1 किलो धान में तो 1 क्विंटल घास आ जाएगा। धान को मांगो धान को, और यदि फसल को मांगोगे तो धान की अपेक्षा तो करोगे ही नहीं, वो ये घास को मांगोगे तो धान की अपेक्षा तो करोगे ही नहीं, और वो बीज उग गया, बड़ा हो गया, पेड़ बड़ा हो गया, हरा भरा दिखने लगा, आप क्या चाहेंगे? काटो काटो जल्दी, लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई ले जाएगा इसको। तो शिट्टे तो अभी बना नहीं था और उसने काट लिया, क्योंकि वही चाहिए था। ये कौन? घास को चाहने वाला कौन? पशु। पशु को घास चाहिए पड़ता हरा भरा, उसको धान से कोई मतलब नहीं। और तिरंज गति में क्यों जाता है मिथ्या दृष्टि जीव? घास चाहता है इसलिए तिरंज गति में जाता है। ऐसा घटित करके विचार करो ना कि मैं गलत क्या कर रहा हूं, कौन सी गलती हो रही है आखिर, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसा विचार करने पर ही हमारे पशुत्व बुद्धि नष्ट हो जाएगी और मनुष्यत्व बुद्धि जागृत हो जाएगी। धर्म करत निर्वाण सुख, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, ये किसको कहा है? मनुष्य को कहा है, पशुत्व बुद्धि वालों को नहीं कहा, मनुष्य को कहा है। जो मनुष्यत्व बुद्धि को प्रकट कर सकता है उसके लिए उपदेश है, जिसको मनुष्यत्व बुद्धि प्रकट हो ही नहीं सकती उसके लिए घास ही घास दिखता है। अब बीज बो करके क्या फायदा? पशु को क्या पता कि ज्वार की क्या कीमत है? उसको केवल घास का मूल्य ही पता है। धर्म करो तो प्योर करो, मनुष्य पर्याय प्राप्त है, गलती मत करो। देखा देखी रूढ़िवाद वाला धर्म मत करो। करने वाले करते हैं, छोड़ो उनको, उधर मत देखो, जिनवानी में देखो, गुरु का उपदेश सुनो, आत्मा की तरफ देखो, और आत्मा का कल्याण कैसे हो, इस संबंध में विचार करो। लोग तो लोग हैं, तुमको गड्ढे में ढकेल देंगे, जीते जी तुम्हारे जीवन को बर्बाद करेंगे। कैसे लोग, जो धर्म को स्वयं भी नहीं समझते, और आप समझ रहे हैं तो विघ्न भी करेंगे, ऐसे लोग काम के नहीं हैं। उनको भी खींचो इधर, समझो इस तत्व को, चर्चा करो, उनको भी खींच खींच करके लाओ, इस मार्ग में लगाओ, ज्ञान पैदा हो जाएगा। उसमें भी मनुष्यत्व बुद्धि प्रकट होने की शक्ति है, भले ही अज्ञान के कारण से पशुत्व बुद्धि हो, लेकिन वह भी प्राप्त कर सकता है। जो हम बन सकते हैं वो भी बन सकता है, वो भी शरीर से मनुष्य ही है और हम भी शरीर से मनुष्य हैं। शरीर से त्रियंच हो तो त्रियंच भी उपदेश ग्रहण कर सम्यक दृष्टि बन सकता है। महावीर भगवान बने थे दसवें भाव में, बने थे कि नहीं बने थे, पशु थे कि नहीं, पशु पर्याय में। तो पशु जब धर्म धारण कर सकता है तो हम क्या कम हैं, हम तो मनुष्य हैं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म को करो, घास भी आएगा और ज्वार भी आएगा, उसमें किसका मूल्य रहेगा, ज्वार का। आप बेच भी सकते हैं, साहूकार बन सकते हैं, ज्वार से मतलब है। और घर में पशु नहीं है तो आप फ्री में किसी को दे देते, घास की क्या कीमत है। और ठंड के दिन में ठंड लग रही हो तो ज्वारी मत जलाना, ठंड लग रहा हो तो काम में आएगा, वो जलाने के काम में आता है, धर्म जलाने के काम में नहीं आता। धर्म का फल जलाने के काम में आता है, वो भौतिक सुख है। भौतिक सुख को जलाओ तो ही परमार्थ सुख मिलेगा। भौतिक सुख को जलाओ का मतलब भौतिक सुख को त्यागो, पूर्णतः त्यागो, अंतरंग कामना को भी त्यागो और वस्तु को भी त्यागो, और बचाओ केवल जारी को, रक्षण करो। जारी धर्म है, जारी सम्यक दर्शन है, जारी महाव्रत है, उसका रक्षण करोगे तो निर्वाण की प्राप्ति साथ में होगी ही होगी। लेकिन घास भी काम में आएगा, जब तक आप मोक्ष नहीं जाओगे, ठंड लगेगी जब जला करके तापने के लिए काम में आएगा। अगर ठंड आपको नहीं लगती है तो दूसरे को, किसी को ठंड लग रहे हो तो ये ले लो। इतना ही करना है, सोच सोच करके काम करना है। धर्म को परीक्षा बुद्धि से करना, रूढ़िवादी से नहीं करना। जब भी धर्म की चर्चा आती है, कोई धर्म धर्मात्मा धर्म कहने के लिए आपके पास आता है तो आपके दिमाग में एक ही विचार रहता है, ये मुझे धर्म समझाने के लिए आया, और ऐसा धर्म समझा रहा है जो आज तक मैंने किया नहीं, और मैंने जो पहले पासून से किया है उसको छुड़ाना चाह रहा है। तो आप परेशान होते हैं उस व्यक्ति से। परेशान होने की क्या जरूरत, यदि वो छुड़ाना चाहता है तो क्यों छुड़ाना चाह रहा है, क्या अर्थ है उसमें, कुछ विचार भी हम कर सकते हैं कि नहीं, सही कौन सा है। हो सकता है मैं जो कर रहा हूं गलत हो इसलिए छुड़ाने आया हूं, ऐसा विचार कर सकते कि नहीं, करना ही चाहिए। धर्म एक अमूल्य वस्तु है, उसकी कोई कीमत नहीं। धर्म एक अद्भुत वस्तु है जो आज तक हमें मिला नहीं। और ऐसे जीवन में नया दर्शन धर्म का होना है तो क्या मार्ग का विचार किए बिना वो हो जाएगा? कहीं रूढ़िवादी परंपरा से वो प्राप्त हो जाएगा? रूढ़िवादी से जो पहले से लोग कर रहे हैं वो ये देखा देखे हम भी कर रहे हैं और मेरा भी धर्म उनके साथ हो जाएगा, ऐसा आंख मीच करके करना है क्या? नहीं, ये आंख मीच कर करने का है ही नहीं। इसका किसी को देख करके अनुकरण करने से भी काम चलने वाला नहीं है। जिसको हम करेंगे उसको कहाँ तक वो सही गलत सोच समझ कर कदम बढ़ाना, ऐसे कदम अगर बढ़ता है तो सम्यक दर्शन उपलब्ध हो जाता है। सम्यक दर्शन हमारा धान्य है और उस सम्यक दर्शन के करते करते परभव में हमारे लिए जो भौतिक सुख स्वयं प्राप्त हो रहे हैं पुण्य के फल स्वरूप, वह हमारा घास है। सम्यक दर्शन धान्य है और वह घास है। हमें सम्यक दर्शन का पालन करना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उद्देश्य से धार्मिक क्रियाओं के बीज को बोना है। ये क्रियाकलाप हमारे बीज हैं सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के। देव दर्शन ये भी बीज है, पूजन ये भी बीज है, उपवास ये भी बीज है। इन सब का एक ही उद्देश्य हमारे लिए सम्यक दर्शन उपलब्ध हो, वो ज्वारी है। वो उपलब्ध हो गया तो कुछ चिंता मत करो। धर्म करत निर्वाण संसार सुख, धर्म करत निर्वाण धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंश समान। नर त्रियंश समान ये उपमा दे दी, उसको त्रियंश कह दिया। क्यों कह दिया? तो घास की इच्छा करता है, तो जो घास की इच्छा करता है वो धर्म कर ही नहीं सकता, इसलिए नर त्रियंश समान। ये उपमा दे दी, ये उदाहरण दे दिया, लेकिन इतना चिंतन हमारा कहाँ होता है? इतना विचार कहाँ बन पाता है? महाराज आप ही बताते हो तभी कुछ समझ में आता है, नहीं तो बस बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। संसार से मुक्त होना आसान नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। कौन सी समस्या? हम विचारक नहीं बन पाते, ये सबसे बड़ी समस्या। धर्म के क्षेत्र में महान विज्ञानी बनो, कोशिश करो, बन सकते। असमर्थ मत समझो, अयोग्य मत समझो अपने आप को। हम भी कुछ हैं, हमारे पास भी बुद्धि है, क्षमता है। संसार क्षेत्र में कितनी दिमाग दौड़ा रहे हैं अपन, हाँ, कितना बैंक बैलेंस, एक एक नया पैसा का ख्याल रहता है, हाँ, इधर का उधर ना हो जाए, एक एक पैसा, एक एक रुपया। कुछ माल ला रहे हैं तो कितनी परीक्षा करते हैं, कुछ दे रहे हैं तो कैसा देते हैं, हाँ, बुद्धि चला करके देते हैं। देते समय तो बहुत बुद्धि चला करके देते हैं, लेते समय तो ऐसा ऐसा देखते हैं चार बार, देते समय कुछ नहीं, उसमें क्या पड़ा है, कैसा दे रहा हूं। हाँ? ये हमारा जीवन है। एक तरफ संसार को आप इतना परीक्षा करके, विचार करके, चिंतक बनकर संसार चला रहे हैं, क्या यही चिंतन शक्ति धर्म के संबंध में उपयोग में नहीं आ सकती? तो धर्म को भी, उस शक्ति को लगाकर धर्म को भी विचार के दृष्टिकोण से स्वीकार करो ना। धर्म के संबंध में बार बार चर्चा करो ज्ञानियों से, अज्ञानियों से नहीं। अज्ञानी तो वही बताएगा घास का मार्ग, पहले पासुन कहेगा और घास का मार्ग पर लगाएगा। बहुत मुश्किल है उनके साथ और हम भटक जाएंगे। अज्ञानियों के पीछे नहीं लगना, आत्म कल्याण करना हो तो सेल्फ डिपेंड हो जाओ, पहला काम। सेल्फ, किसी पर डिपेंड नहीं। अपना धर्म करने के लिए अपन को निर्णय लेना है, सेल्फ ही लेना है, किसी को पूछ कर नहीं। धर्म करना किसी अन्य के निर्णय से होगा क्या? स्वयं निर्णय करना पड़ेगा ना कि मुझे कौन सा करना है, उसमें अच्छा कौन सा और बुरा कौन सा, मुझे विचार करना है ना। ये बहुत बारीकी से मार्ग मिल रहा है, स्वीकार करना उसको। ऐसे उपदेश कभी मिले यथार्थ धर्म के? ये बाजार में मिल नहीं सकते, बाजार में भीड़ मिलती है केवल। इसकी चर्चा, इसका अध्ययन, इसका विचार रखने वाले बाजार में नहीं मिलेंगे, सब संसारी हैं वहां। वहां भौतिक 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 भौतिक, सब जगह भौतिक छाया हुआ है। यहाँ धर्म छाया हुआ है, यहाँ आनंद छाया हुआ है, यहाँ अलौकिक दृश्य छाया हुआ है। जो आज तक तुमने नहीं किया वो यहाँ बताया जा रहा है, जो आज तक अनुभव में नहीं आया वो अनुभव का रास्ता बताया जा रहा है। और वो एकाएक हमको रास्ता मिल गया, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अर्ध पुद्गल परावर्तन। प्रश्न 12, नमोकार मंत्र किस भाषा और किस छंद में लिखा गया है? कहा है, नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा एवं आर्या छंद में लिखा गया है। भाषा कौन सी है? प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़, मराठी, इंग्लिश, ये सब भाषाएं हैं। नमोकार मंत्र किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। इतना तो ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो इंग्लिश भाषा में है न कह दे। जैन धर्म का नमोकार मंत्र किस भाषा में है? जैन धर्म का नमोकार मंत्र इंग्लिश भाषा में। सोचे बिना उत्तर दे दिया। प्राकृत भाषा यानी प्रकृति से उत्पन्न भाषा। बालक उत्पन्न होने के बाद आप बोलना सिखाते हैं तो वह मराठी हो, कन्नड़ हो, कोई भी हो, जब बोलता है तुतली भाषा से बोलता है, तोतली भाषा। नमोस्तु कह कहते हैं, नमोथु बोलता है। और वो भी नहीं बोल सकता है नमोस्तु, नमोथु भी नहीं बोल सक रहा है, तो आप कहते हैं जय कर। तो एक ही शब्द है वो, और जय करता है। नमोस्तु ये संस्कृत शब्द है, और नमोथु ये प्राकृत शब्द है। नमोस्तु कौन बोल सकता है? बड़ा, जो बड़ा है, जिनको मुंह में सारे दांत आए हैं। बोलने के लिए दांत भी चाहिए पड़ते हैं, वो सहायक हैं। जिनको सारे दांत आ गए हैं और जीभ भी सही काम करने लग गई है, ऐसे प्रौढ़ता आने के बाद ही हम नमोस्तु ऐसा उच्चारण कर सकते हैं। बालक अभी दांत आ रहे हैं, अभी 2 साल का है, अभी तो जीभ भी बहुत मोटी है, उसमें भी प्रौढ़ता नहीं है, चपलता नहीं है, उस समय आप प्रैक्टिस कराते हैं तो वो क्या बोलता है? नमोथु, नमोथु। परमिष्टि बोलो तो कहते हैं परमिट्टी। बिल्कुल वो जो बालक बोलता है ना, वो प्राकृत भाषा का शब्द है, और जो बड़ा बोलता है ना, वो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो संस्कृत भाषा बड़ों की भाषा है, और प्राकृत भाषा प्राकृतिक भाषा है, जो जन्म की है, जन्म की शुरुआत में जो बोला जाता है वो भाषा प्राकृत भाषा। और पहले काल में इस प्राकृत भाषा को देशभाषा भी कहा है। इस महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर भारत में, सब जगह प्राकृत भाषा बोली जाती थी, और सभी जब बोलते थे ना कि अरहंत को नमस्तु करो, तो कहने नमोत्तु, बड़ा भी वही बोलता था और छोटा भी। कैसा लगता होगा? अरे इसको नमोस्तु बोलना नहीं आता, ये तो बाद में आया। जब संस्कृत भाषा रूढ़ में आ गई तब कहा जाने लगा कि ये नमोस्तु बोल नहीं सकता, तो जो नमोस्तु बोल रहा है वो बड़ा कहलाया और जो नहीं बोल पा रहा है वो छोटा कहलाया। पहले काल में प्राकृत भाषा ही चलती थी, बड़े भी वही बोलते थे। महावीर भगवान के काल में भगवान महावीर स्वयं प्राकृत भाषा घर में रहते हुए प्राकृत भाषा ही बोलते थे। अर्धमागधी जिसका नाम है, मागध देश में प्राकृत भाषा, अर्धमागधी ये जो शब्द है ना, मागध देश उस देश का नाम है। अर्धमागधी यानी उस मागध देश में आधा भाग में कुछ प्राकृत भाषा कुछ और ढंग से बोलते थे, कुछ आधे भाग में और ढंग से बोलते थे, तो इसलिए अर्धमागधी। अर्धमागधी यानी संपूर्ण मगध देश में बोली जाने वाली भाषा अर्धमागधी। लेकिन वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत ही थी। सिर्फ कुछ शब्द कुछ वाक्य कुछ सेंटेंस वो यहां के अलग पड़ते थे और वहां के अलग पड़ते थे। जैसे कर्नाटक में और महाराष्ट्र के इस बॉर्डर में कन्नड़ भाषा दो तरह से बोली जाती है, और कुछ शब्द यहाँ बॉर्डर के शब्द अलग हैं और मैसूर साइड के शब्द कर्नाटक के वो अलग हैं। वो आप शेंगा बोलते हैं ना इसको, मूंगफली को, मूंगफली को शेंगा बोलते हैं, शेंगा। कन्नड़ में क्या बोलते हैं? भमुकाई। इधर भमुकाई बोला जाता है और उधर शेंगा काई बोला जाता है, शेंगा बोला जाता है। उधर शेंगा और इधर भमुकाई। इधर के लोग उधर जाकर के भमुकाई दे दो तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। तो भमुकाई ये कैसे शब्द बना? भमु ये कौन सा शब्द? ये अपभ्रंश हो गया। वो शुद्ध शब्द क्या था? उधर शेंगा और उसके साथ साथ भूमिकाई बोलते थे। भूमियल्लि बेळेदंतह काई यानी मेले बेळेदंतह काई, भूमियल्लि बेळेदंतह काई भूमिकाई। ಅದು ಭೂಮಿ ಕಾಯಿ ಇತ್ತು, ಅಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಭೂಮಿ ಕಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇಕಡೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಭೂಮಿ ಕಾಯಿ ಭಮುಕಾಯಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಹಿಂಗಾಯ್ತದ. ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಟಕ್ಕರ್ ಆಗ್ತವೆ ಎರಡು, ಇನ್ ದೋನೋಕ್ಕೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮೇ ಶಬ್ದ ಬದಲ್ ಜಾತಿ ಹಿ, अपभ्रंश भाषा बन जाती है। कोई भाषा जब बिगड़ करके दूसरे रूप में शब्दों को बोला जाता है उसको अपभ्रंश कहते हैं। रूप अलग बन जाता है, बोलने का शब्द ही अलग बन जाता है। भमु अंदरे क्या है? भमु का मतलब क्या है? भूमि। भमु अंदरे भूमि, ऐसा समझाना पड़ेगा कालांतर में। कोई संशोधक संशोधन करेगा ना। ये भमुकाई कहाँ से शब्द आया? तो वो कहेगा भमु यानी भूमि, और भूमि को ही बोलते बोलते वो भमु हो गया, भमु से भमुकाई बन गए। काई शब्द चेंज नहीं हुआ, भूमि शब्द चेंज हो गया। प्राकृत भाषा में है यह नमोकार मंत्र, और नमोकार मंत्र को प्राकृत भाषा में बोलते समय वो भाषा जैसी है वैसा ही बोलना चाहिए, उसके उच्चारण में कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए। प्राकृत भाषा को प्राकृत की तरह, संस्कृत भाषा को संस्कृत की तरह उच्चारण करना चाहिए। क्या उत्तर दिया? नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा एवं आर्या छंद में लिखा गया है। छंद कौन सा है? छंद यानी पद्य, छंद यानी पद्य, किस पद्य में है। पद्य अनेक प्रकार के होते हैं, आर्या पद्य, आर्या छंद, शार्द्रो शार्दूल विक्रीडित छंद, शिकरिणी छंद, अनुष्टुप छंद, गीता छंद, गीतिका छंद, छंद बहुत प्रकार के हैं। इन सभी छंदों में लय अलग अलग होता है। धाटी ये लय 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 के अनुसार बोलना चाहिए। तो आर्या छंद को किस लय में बोला जाता है, तो लय कोई भी लगा दो, उसमें एक संगीत चाल अवश्य होती है, उसके अनुरूप बोलना। अनेक प्रकार से भी बोला जा सकता है, एक प्रकार से भी बोला जा सकता है। तो आर्या छंद की जो चाल है वो कैसी है, तो सामान्यतः ऐसी है। द्रव्य संग्रह का ग्रंथ छंद पढ़ते हैं ना, वैसा कैसे बोलते हैं आप लोग? द्रव्य संग्रह पढ़ा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा। जीवम जीवम दव्वम जिनवरवसहेन जेन निदिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। ये कौन सी चाल हो गई? आर्या छंद की चाल है। अब नमोकार मंत्र को भी इसी तरह से बोला जा सकता है। बोलो, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सवसाहूणम। सेम छंद है ना, सेम ही चाल है। और इस चाल को बदलकर अन्य चाल भी बिठा सकते हैं, वो तो फिर संगीत जिसको आता है वो अनेक प्रकार के चालों को। भक्तामर को देखिए आप, कितने चाल में गाते हैं लोग आजकल। वो है वसंत तिलका छंद, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनाना। ये भी एक चाल है, अन्य चाल भी बिठाते हैं। कैसे? हाँ, वो भी एक है और एक, वो भी एक है और एक, बहुत सारे चाल बिठाए हैं। और एक उसके कैसेटें भी बन गई हैं, कैसेट बनाया है याद? वो सबसे पहले जो कैसेट निकली ना, उसमें बहुत बढ़िया है। हाँ, चोतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। ये भी एक चाल है। तो वसंत तिलका एक छंद है, एक छंद को अनेक चाल में हम गा सकते हैं। और गीत संगीतकार अनेक चाल पैदा कर सकता है। संगीतकार के हाथ में इसको दिया जाए, बहुत चाल बैठा लेगा वो। एक और है, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। ये भी एक है, संगीतकार के हाथ में मिल गया तो बहुत सारे चाल बिठा सकता है। ऐसे नमोकार मंत्र को भी कई चाल से बोल सकते हैं। नमोकार मंत्र का जाप देते समय चाल नहीं बिठाया जाता, केवल पदों का उच्चारण मात्र किया जाता है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सव्वसाहूनम। ये जाप के समय ऐसा बोलते हैं, पर जब गाना ही हो तो चाल बिठाना पड़ता है, गाना हो तो चाल बिठाना पड़ेगा। तो जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? नमोकार मंत्र है। उसके सामने पंच शब्द जोड़ दिया तो भी चलेगा, क्योंकि पांचों पद मिलकर के ही यह नमोकार मंत्र बनता है, इसलिए पंच नमस्कार मंत्र ऐसा नाम है। प्रश्न आगे का, नमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया गया है? नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। इस मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार न करके गुणों को नमस्कार किया है। ये पद जो है ना, अरहंत ये पद का नाम है, सिद्ध ये भी पद का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं। आज तक जितने भी मोक्ष गए उनके नाम तो अलग अलग हैं सबके, पर जब वो मोक्ष गए उस समय उनको क्या कहा? सिद्ध कहा। तो सबका नाम सिद्ध ही है ना। और वे जब मोक्ष नहीं गए थे, संसार में थे, शरीरधारी थे, उस समय उनका नाम अलग अलग था क्या? नहीं। तीर्थंकरों का नाम अलग अलग रहा क्या? नहीं। महावीर भगवान, जब तक वो शरीर में थे तब तक महावीर भगवान उनका नाम था, मोक्ष गए तब नाम बदल गया। यानी क्या प्राप्त किया उन्होंने? पद प्राप्त किया। कौन सा पद? सिद्ध पद। सिद्ध पद यानी कौन सा पद? मोक्ष पद। मोक्ष पद यानी कौन सा पद? आप जो पूजन में बोलते हैं अर्घ के टाइम में वो पद, अनर्घ्य पद। हाँ, अनर्घ्य पद, वो पद, अनर्घ्य पद पाया। 24 तीर्थंकर सब ने क्या पाया? अनर्घ्य पद पाया। उन्होंने तो पाया, हमने नहीं पाया। हमको भी अनर्घ्य पद ही पाना है, इसलिए अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। चढ़ाने वाला यह अर्घ्य, चढ़ाया जाने वाला यह अर्घ्य, अर्घ्य है, अनर्घ्य नहीं। अनर्घ्य यानी मोक्ष, अर्घ्य यानी जिसका मूल्य है वह वस्तु। अनर्घ्य यानी अमूल्य, जिसका मूल्य ही नहीं है वह वस्तु, यानी सिद्ध पद। हमारे आत्मा का शुद्ध पद है वो। हमारे शुद्ध पद की कोई कीमत हो सकती है? इसलिए उसको अनर्घ्य कहा। अनर्घ्य यानी अमूल्य, और अर्घ्य यानी मूल्य। तो जो चढ़ाया जा रहा है ये क्या है? नारियल है, फल है, जल है, अक्षत है, दीप है, धूप है, ये सब कुछ चढ़ाया जा रहा है। तो इसको इसको खरीद करके लाए थे क्या? नहीं। तो उसका मूल्य है, खरीद के लाए थे। और बेच भी सकते हैं क्या? नहीं, बेच भी सकते हैं। उसका मूल्य है, मूल्य में बिक भी सकता है, लेकिन सिद्ध पद को न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं, इसलिए उसको अनर्घ्य कहा। सिद्ध भगवान के पद को अनर्घ्य पद कहा। अगला प्रश्न क्या पता है इसमें? व्यक्ति विशेष को, इसमें व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है। किस मंत्र में? नमोकार मंत्र में। नमो अरिहंतानम, ये अरिहंत किसी का नाम है क्या? लेकिन आजकल नाम भी रखने लगे लोग अपने अपने बेटों का, बेटों का नाम ही नहीं दुकान का नाम भी रखने लगे। हाँ, प्रतिष्ठान का नाम, हाँ, अरहंत एजेंसी, हाँ, अरहंत वस्त्र भंडार भी रखते हैं। अरे भैया, अरहंत और वस्त्र का क्या संबंध है? हाँ? हाँ? वड़ा पाव का और अरहंत का संबंध क्या है, लेकिन नाम रखते हैं अरहंत कॉलोनी। बताओ अरहंत इस कॉलोनी में रहे हों पहले? इस कॉलोनी में अरहंत भगवान रहे हुए, अरहंत कॉलोनी। अरहंत किसी कॉलोनी का नाम नहीं, व्यक्ति का नाम नहीं, प्रतिष्ठान का नाम नहीं, ये अरहंत तो एक पद का नाम है। ये पद कैसा पद? जो व्यक्ति अपने घाती कर्म को नाश कर लेता है वो अरहंत पद प्राप्त करता है, वो केवल ज्ञानी कहलाता है, वो परम वीतरागी कहलाता है। उस वीतराग आत्मदशा का नाम अरहंत है। इस शब्द का प्रयोग हमने अनेकों जगह कर दिया और फिर कल के दिन ये बहुत बड़ी समस्या होगी। नमो अरहंतानम कहने से ये प्रतिष्ठान को नमस्कार कर रहा हूँ क्या, कॉलोनी को नमस्कार कर रहा हूँ कि वो अरहंत व्यक्ति जो नामधारी है उसको नमस्कार कर रहा हूँ, समस्या में पड़ जाएंगे। ज्ञान ना हो तो ऐसा ही होगा ना, कुछ भी मालूम ना हो, ज्ञान ना हो तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। नमो अरहंतानम, जैसे माता पिता बिल्कुल अज्ञान है, कुछ भी स्वाध्याय नहीं किया है, या ना वो किसी ने कह दिया तुम्हारा लड़का जन्म होगा या जन्म ले लिया तुम्हारे लड़के ने, हाँ ठीक है जन्म ले लिया, नाम रखना है, पूछा तो उसने कहा अरहंत रख दो, तो आपने अरहंत रख दिया। अब धीरे धीरे आप धार्मिक बन गए और नमोकार मंत्र वगैरह भी पढ़ना आ गया माता पिता को। नमोकार मंत्र आ गया, तब तक धर्म में नहीं थे, पहली बार आए। पहली बार धर्म में आए वो, और किसी ने नमोकार मंत्र सिखाया माता पिता को, तो उन्हें सीख लिया क्या बोलना, पहले पद में तो नमो अरहंतानम ही बोलना चाहिए। सिखा दिया और उसने, उन्होंने भी सीखा, दोनों ने नमो अरहंतानम कहते ही कौन आएगा बोलो, उनके अपना लड़का ही आएगा। कल के दिन कोई पूछेगा, प्रश्न करेगा, नमो अरहंतानम तुम दोनों बोलते हो, जाप देते हो, बोलो किसको नमस्कार करते, तो माता पिता दोनों ही मिलकर के उत्तर देंगे, हमारे लड़के को। ऐसा भी हो सकता है अरहंत रखेंगे तो, लोग महावीर भी नाम रखते हैं, आदिनाथ भी रखते हैं, अजित भी रखते हैं, अभिनंदन भी रखते हैं। हाँ, 24 तीर्थंकर के नाम सभी रखते हैं, पार्श्वनाथ भी रखते हैं। अब जब मंदिर में जाएंगे ये माता पिता, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करेंगे, तब पार्श्वनाथ भगवान दिखेंगे कि लड़का दिखेगा? और फिर अंत में नमोकार मंत्र में अरहंत पद रख दिया, अरहंत नाम लड़के का नाम रख दिया, लास्ट में मरण के टाइम में नमो अरहंता नाम कहने से लड़का आएगा दृष्टि के सामने, अरहंत भगवान आएंगे। देखो, नाम रखने का ये पद्धति गलत नहीं है, आप इस उद्देश्य से रखते हैं कि हमारे लड़के के पास ऐसे अरहंत भगवान की गुण आ जाए, ऐसी भावना से ही रखते हैं। परंतु माता पिता कितने ज्ञानी रहते मालूम, कितना ज्ञान उनके पास रहता है, सद्भावना तो ये रही जन्म के बाद कि हमारे लड़के के पास पार्श्वनाथ के गुण आ जाए, अरहंत के गुण आ जाए, इसलिए अरहंत रखा है। और फिर लड़का मुनि महाराज का उपदेश सुन करके वैरागी बन गया और घर छोड़ने लगा, तो अरहंत को रोकोगे क्या? नहीं। और किस उद्देश्य से रखा है? उद्देश्य क्या था? हाँ, अरहंत का गुण हमारे लड़के में आ जाए, और अरहंत ही अरहंत के गुण को प्राप्त करने के लिए जब चल पड़ा तब आप रोने लगते हैं, ये कैसी बात? ये मोह है। मोही जीव चाहता तो अच्छा ही है, मुझे अच्छा हो, लड़के का अच्छा हो, लड़के तो भगवान के रूप में दिखे, लेकिन घर छोड़ करके नहीं, घर में रहते हुए। और भगवान को अरहंत रख करके उनको घर में ही रोकेंगे तो आपके मरण के काल में भी मोही बुद्धि के कारण लड़का ही ख्याल में आएगा, वो अरहंत भगवान नहीं आएंगे। और लड़के का स्मरण करते करते मरण होगा तो किसी भी गति में जा सकते हैं, और अरहंत का जाप करते करते आप मरण करेंगे तो देवगति में भी जा सकते हैं। तो नाम रखते समय सावधानी से रखो, यदि नाम रखा ही है तो उसके समान काम भी करो कि लड़का हमारा अरहंत बनने के लिए जा रहा है, मुनि बनने के लिए जा रहा है, तो हमको रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो नाम हटाओ, दूसरा रखो, कोई सांसारिक रखो। अरहंत रखने के बजाय मोही रखो। कोई नहीं रखता मोही, क्योंकि मोह दोष है ये मालूम भी है, और अरहंत बहुत बढ़िया गुण है, वो सुखदाई है ये भी मालूम है। मोही जीव चाहता तो सुख है लेकिन करता है मोह का ही काम, उसकी करनी अलग और कथनी अलग, उसकी चाह अलग, चाह में तो सुख चाहिए, और उनका कार्य अलग, न इधर के न उधर के, ऐसे बीच में लटकते रहते। जीवन को बदलना है, बदलते जाओ। नमोकार मंत्र की रचना किसने की है? 14वां प्रश्न। नमोकार मंत्र की रचना किसी ने नहीं की, अपितु वह अनादि निधन मंत्र है। अनादि निधन का मतलब क्या? इसका कोई अंत नहीं, बहुत पहले से है, करोड़ों अरबों खरबों नहीं, उसका कोई अंत नहीं, कहने के लिए शब्द नहीं, अनंत एक शब्द दिया गया है जिसका अंत देखो अनंत का मतलब ध्यान में रखो, जिसका आदि भी नहीं होता, जिसका अंत भी नहीं होता, और मध्य भी नहीं होता। मध्य कब होता है? जिसका आदि और अंत होता है उसका मध्य भी होता है, जिसका आदि मध्य अंत नहीं होता उसी का नाम अनंत। लड़के का नाम अनंत नाम रखो, अनंत नाथ। हमारा लड़का ये भी जीव द्रव्य है, लड़का जीव द्रव्य नहीं क्या? मनुष्य पर्याय का जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति है, इसलिए इसका नाम हम अनंत रखते हैं। रखो ऐसा नाम, लेकिन अनंत का पुरुषार्थ करने के लिए खड़ा हो जाए तो रोना नहीं, भेजने के लिए जाना साथ में, तो सार्थक है नाम रखना। लड़का जा रहा है अच्छा काम करने के लिए जा रहा है कि बुरा, फिर क्यों रोकते? ये मोह बुद्धि क्यों? महाराज हमको देखने वाला कौन फिर? तो तुमको देखने वाला वो लड़का ही तो रहेगा, उनके साथ तुम भी जाओ ना, वही लड़का तुमको देखेगा, तुम क्यों नहीं जाते? तुम तो घर में रहना चाहते, और वो घर छोड़ना चाह रहा है, क्यों विकल्प करते? ऐसा विकल्प आना चाहिए, हमारा घर का कोई भी एक व्यक्ति दीक्षा ले लेगा तो हमारे अंत समय में संसार में तो कुछ नहीं है, निरस है ये, हमारे अंत समय में हमारे मरण के काल में नमोकार मंत्र सुनाने वाला, सल्लेखना मरण कराने वाला हमारा ही लड़का मिल जाए तो हम हमारा कितना बड़ा भाग्य रहेगा, ऐसा विचार क्यों नहीं आता? आप धार्मिक नहीं है ना, नकली धार्मिक धर्म करते हैं, आप असली धर्म नहीं करते, सोच विचार वाला धर्म नहीं करते, मोह धर्म, मोह वाला धर्म करते हैं, मोह वाला। जिस धर्म में मोह हो वो धर्म हमको चाहिए। तो जहां मोह होता है वो धर्म ही नहीं कहलाता। घर को आश्रम बनाना चाहिए। देखो नई बात बता रहा हूं, क्या बनाना चाहिए? आश्रम। आश्रम का मतलब असमंतात श्रम जहां होता हो ऐसा आश्रम बनाना चाहिए। कैसा आश्रम बनाना चाहिए? देखो, संसार करो, दुकान करो, कमाओ, रखो, लेकिन किसके लिए कमाओ? आश्रम चलाने के लिए। आश्रम में कौन रहे? तो सभी ब्रह्मचारी रहे। देखो, आश्रम की शुरुआत ब्रह्मचर्य से होती है कि शादी से होती है? हाँ, ब्रह्मचर्य से होती है। आश्रम में प्रवेश करने वाला अगर ब्रह्मचारी है तो प्रवेश करता है। तो आश्रम कहाँ है, किस देश में है, किस प्रदेश में है, ढूंढते हुए जाना पड़ेगा क्या? नहीं जाना पड़ेगा। खुद के घर को आश्रम बनाओ। क्या लेकर? ब्रह्मचर्य व्रत लेकर। कितने सदस्य हो? चार लोग, दो लड़के हैं, एक लड़की है, एक लड़का है, माता पिता। माता पिता को सोचना चाहिए, हम बड़े हैं और धर्म के प्रति हमारी आस्था भी है, हम धार्मिक भी बनना चाहते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा है। तो सबसे पहले संकल्प ले लो, हमको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। ले लो, तो लेने के बाद कहाँ जाना, कहाँ रहना, ये विचार की जरूरत नहीं। घर है क्या? नहीं, घर है। घर में ब्रह्मचर्य व्रत ले करके रहेंगे तो क्या पालन नहीं होगा? होगा। दोनों ने ले लिया, पति पत्नी, और बेटों की शादी नहीं करना, बेटा बेटियों की शादी नहीं करना। नहीं करना तो जबरदस्ती करोगे क्या? उसको पूछना पहले, तुमको क्या लगता है, शादी करना या नहीं करना? अगर कहा कि शादी हमको नहीं करना है तो सौभाग्य समझ लेना अपना कि शादी नहीं कर रहा है। कोई बेटा बेटी शादी नहीं कर रहे हैं दोनों, तो अपने भाग्य पुण्य का उदय अहोभाग्य समझना और ले जाकर के आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दिलाना। किसको? बेटा बेटी को। शादी का क्यों सोचते? गड्ढे में ढकेलने का सोचते? अपने संतान को आप सुखी देखना चाहते हैं क्या, दुखी? तो शादी करने के बाद सुख रहता है क्या, दुख रहता है, आप ही देख रहे हैं। दुख रहता है क्या सुख? शादी किए हुए जितने भी लोग हैं वो सुखी हैं क्या, दुखी हैं, बोलो? और ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाले कोई भी सुखी हैं क्या, दुखी हैं, बोलो? सुखी रहते हैं कि नहीं? कितना निश्चिंत रहते हैं, एक ही अकेले। और अकेला हम कोई भी काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, वो भी धर्म चलाने के लिए, संयम चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए। केवल जीवन गुजार के लिए थोड़ा सा कमा लिया, आनंद से रहे, ये विचार आता क्यों नहीं है? मोह बुद्धि, दुखी बुद्धि, जीव मोही है। जो निर्मोही बनना चाहता है उसको भी मोह में फंसाने की बुद्धि उत्पन्न होती है हमारी। और वास्तव में होना चाहिए कि नहीं है? होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपने बेटों को घर से पार कराने की बुद्धि होना चाहिए कि घर में बांध करके रखने की बुद्धि होना चाहिए? पार कराने की। खुद भी पार हो जाओ, उनको भी पार करो, ये है धर्म। और मान लो चारों ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, लड़की भी तैयार हो गई, लड़की भी तैयार हो गई, हमको भी शादी नहीं चाहिए, तुमने जैसा माता पिता तुम दोनों ने जैसा ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, हमको वैसा ब्रह्मचर्य व्रत दिला दो महाराज से, क्या दिक्कत है? खुद के घर में चार लोग रह रहे हैं, ये आश्रम नहीं है क्या? हाँ? दूसरे आश्रम जंगल में जो रहने वाले जो बिल्डिंग्स रहते हैं वो आश्रम है क्या? आश्रम किसको कहते हैं? जहां पर संसार नहीं चलता उसका नाम आश्रम है। ऐसा करना आवश्यक है, ये असली धर्म है, ये खरे धर्म है, खरे खरे क्या बोलते, खरा खरा, खरा धर्म है, खरा मराठी शब्द खरा है, खरा। और ये नहीं होता है तो अखरा, सारा जीवन अखर गया, अखरा अखरा, और मराठी में अखरा ग्यारह, एक एक लिखते समय अकरा हो जाता है, मिलाने पर दो हो जाता है, एक के सामने एक आने पर ही संसार प्रारंभ होता है, वहां पर दो बन जाते, एक ही था पहले शुरुआत में मूल में, उसके सामने एक और आ गया तो दो बन गए, दो बने बिना संसार चलता है क्या? तो तुम्हारे सामने अकरा है, एक बेटा है, एक ही है कि नहीं, एक बेटा है एक बेटी है, इनको दो दो मत बनाओ, इनको एक ही रहने दो, और वो चाहते हैं तो रहने दो, धर्म को ही थोपने वाली चीज नहीं है, अगर वो दोनों चाहते हैं तो उनको एक एक ही रहने दो, एक एक अकरा हो गया क्या? नहीं, उनके सामने एक एक और जोड़ दोगे तो दो बन जाएंगी वो, तो दो जहां बनेगा वहां संसार चलेगा, संसारी नहीं बनाना किसी को। सोचो, मोह बुद्धि से मत सोचो, संसार के दृष्टिकोण से मत सोचो, अपनी संतान के प्रति। जैन धर्म के सारे ग्रंथ ये शिक्षा देते हैं, किसको? जैन श्रावकों को ये शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? किसी को संसार की दृष्टिकोण से विचार मत करो, किसी के संबंध में संसार की दृष्टि को अपनी दृष्टि में रखकर उनको मत सोचो, वो स्वयं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला आत्मा है, वो स्वयं सोचेगा, वो अपने उपादान से जो करना चाहता है वो उसको करने दो, थोपो नहीं। धर्म को जिस प्रकार से थोपा नहीं जाता, संसार भी उसी प्रकार से थोपा नहीं जाएगा, संसार भी थोपने की वस्तु नहीं और धर्म भी थोपने की वस्तु नहीं, जीव अपने उपादान से जो करना चाहते हैं उसको करने दो, और कोई अच्छा करने के लिए जा रहा है, धर्म ही करने के लिए जा रहा है तो उसको रोको मत, रोकने से बहुत बड़ा पाप लगता है। कौन सा कर्म का बंध होता मालूम? मोह के उदय से किसी के निर्मोह के निर्मोहता के मार्ग को रोकने से मोहनी कर्म का ही बंध होता है। कौन सा मोहनी कर्म? इसमें चारित्र मोहनी कर्म का बंध होता है। चारित्र मोह क्या कहलाता है? चारित्र मोह हमको निर्मोही बनने नहीं देता, चारित्र लेने नहीं देता, संयम ग्रहण करने नहीं देता, ऐसी शक्ति वाला कर्म। ये कर्म कब बंधता है? जब हम निर्मोही को मोही बनाने का प्रयास करते हैं, या निर्मोही को हम निर्मोही बनने से रोकते हैं, तब अंतराय कर्म का भी बंद होता है, लाभांतराय कर्म का बंद होगा। संयम का लाभ प्राप्त करने ही तो ये जा रहा था और हमने उसको रोक दिया, तो आपको भी वो फल मिलेगा। जब आपको वैराग्य होगा ना, तब रोकने वाले, आपको रोकने वाले आएंगे लोग, मोही लोग आएंगे, तो उस समय आपको दुख होता है, मैं इतना प्रयत्न करता हूं इतना प्रयत्न करता हूं, लेकिन ऐसी कौन सा मैंने कर्म किया है पता नहीं कि मुझे सभी विघ्न डाल रहे हैं, अनुकूलता है मिल नहीं रही है, प्रतिकूलता आ रही है, सभी विघ्न कर रहे हैं मोक्ष मार्ग में चलने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति क्यों आई? तुमने किसी को रोका होगा, अब तुमको कोई रोक रहा है। कर्म किया है तो किसी को छोड़ता नहीं है, एक मिनट के लिए किया है तो एक मिनट का भी फल मिलेगा, एक सेकंड के लिए किया है तो एक सेकंड का फल मिलेगा, मिले बिना तो जाएगा ही नहीं, व्यर्थ नहीं जाता कर्म। टाइम हो गया, हाँ 14 कितने हो गए, 13 हो गए कि 14, 13 हो गए, 13 हो गए, ठीक 14। नमोकार मंत्र की रचना किसने की है? नमोकार मंत्र की रचना किसी ने नहीं की है, अपितु वह अनादि निधन मंत्र है। हाँ, नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र को सर्वप्रथम आचार्य जिनसेन जी के, दर्शन जी के, हाँ दर्शन जी के शिष्य मुनि पुष्पदंत जी महाराज ने षटखंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में लिपिबद्ध किया है। शास्त्रों की रचना पहली शताब्दी से ही होना शुरू हुआ है, ऐसा मत समझना कि एक पहली शताब्दी से नमोकार मंत्र लिखा है तो वहीं से ये शुरू हुआ, उसके पहले भी था, परंतु लिखते नहीं थे, उच्चारण करते थे, जाप देते थे, सब कुछ था, किंतु सर्वप्रथम षटखंडागम ग्रंथ जब लिखे तो उसके मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र को ही दे दिया। ये नमोकार मंत्र फिर ग्रंथारूढ़ हो गया, उससे पहले ग्रंथ लिखे नहीं जाते थे, वो ग्रंथ के रूप में कहीं नहीं मिलता था, ग्रंथ ही नहीं थे तो ग्रंथ के रूप में कहाँ से मिलेगा। परंतु क्या चतुर्थ काल में नमोकार मंत्र नहीं था, जाप नहीं करते थे लोग? था, अनादिकाल से है, लोग इसी नमोकार मंत्र के जाप से ही मोक्ष गए हैं सभी, तो ये इसका अर्थ है। जिनवानी प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।